खराब हो जाता है और आप इंटरेस्ट में पेमेंट जो करते हैं वो पैसा भी आपका सारा जाया होता है। जो ही आपको लगे कि आपका बजट टाइट है, मिनिमम पेमेंट्स किए जा रहे हैं, या एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं, चाहे वो छोटा सा डेट है, 1,000, 2,000, 5,000 का डेट है, तो आप मेरे ऑफिस में आके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फ्री कंसल्टेशन है, प्राइवेसी का पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है। अगर आपका डेट कम होगा तो हो सकता है आपका क्रेडिट भी खराब ना हो, सिर्फ मनी मैनेजमेंट करके ही आपका मसला हल हो जाए। या अगर कर्जा ज्यादा है तो हम आपको रिलीफ लेके देंगे, क्रेडिटर से जितना मैक्सिमम हो सके कर्जा माफ करवा देंगे, बाकी छोटी छोटी किस्तों में बगैर इंटरेस्ट के आपको पे करना होगा। और उसमें अगर आपका क्रेडिट खराब होता भी हो तो हम दोबारा क्रेडिट बिल्ड करने में आपकी पूरी पूरी हेल्प की जाती है और दोबारा आपको सब कुछ वापस मिल सकता है। क्रेडिट कार्ड भी, लाइन ऑफ क्रेडिट भी, मॉर्गेज भी, सब कुछ आपको मिलेगा। और स्पेशली जो लोग जिन में गलत कंसेप्ट हैं कि मेरे नाम पे घर है तो मुझे रिलीफ मिल नहीं सकता, या मैंने रिलीफ ले लिया तो मुझे कभी मॉर्गेज नहीं मिलेगी, एक तो मैं ये बताता चलूं कि आपके नाम पे जितने भी एसेट्स हैं, चाहे वो पेड ऑफ घर है, आरओएसपी है, आरईएसपी है, तमाम एसेट्स को हम लीगल तरीके से सेव करते हुए आपको डेट फ्री करने में हेल्प करते हैं। और अगर इसमें क्रेडिट हर्ट होता है तो हम एनरोल करते हैं अपने क्लाइंट को क्रेडिट रिबिल्ड प्रोग्राम में और आपको सब कुछ वापस मिल सकता है। इसलिए घर बैठ के प्लीज डिसाइड ना कर लें कि मेरे लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आप आ सकते हैं मेरे ऑफिस में, जो भी आपके जहन में कंसर्न है वो आपके डिस्कस करें और उसके बाद आप घर जाके डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये ऑप्शन आपके लिए वायबल है तो आप मुझे अपना केस दें और मेरे ऑफिस में इस चीज की मैं गारंटी करता हूँ कि एक तो ऑनेस्ट एडवाइस मिलेगी आपको, दूसरा अगर आपका मैं केस लूंगा रिव्यू करने के बाद तो किसी किस्म का सरप्राइज आपको मेरे ऑफिस से कभी नहीं मिलेगा। जो वादा करूंगा उसके मुताबिक केस अप्रूव करवा के दूंगा और उसके बाद आपने हमारी फीस पे करनी, उससे पहले कुछ आपने पे नहीं करना।
जी हाँ, ऑल डेप्थ सॉल्यूशन से मोहम्मद सदीक साहब से इस वक्त आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। 4166710577, 4166710577 पर आप राब्ता कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन के देखें, स्कोर अगर कम हो जाता है या क्रेडिट कार्ड अगर, तो फिर आगे कर्जा मिलना मुश्किल हो जाता है, तो क्या आपसे मिलकर जैसे आपने कुछ सॉल्यूशन बताया तो क्या ये स्कोर वापस आ जाता है?
जी बिल्कुल सर, आ जाता है, डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शन आप चूज करते हैं। स्कोर अगर ऊपर लेके जाना है आपको तो आप एक तो 35% से कम बैलेंस रखना पड़ेगा अपने क्रेडिट कार्ड्स पे। अच्छा। क्योंकि अगर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 35% से ज्यादा हुआ तो स्कोर ऊपर नहीं जाएगा, और 50% से ज्यादा हुआ तो आपका स्कोर नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो इन चीजों का दूसरा, जब आप क्रेडिट कार्ड बंद करवाते हैं तब भी आपका स्कोर नीचे आता है, इसका खास ख्याल रखें कि अगर आपका क्रेडिट ऑलरेडी लो है तो क्रेडिट कार्ड आपने बंद ना करवाएं, चाहे वो यूज करें ना करें, लेकिन बंद करवाएंगे तो आपको स्कोर नीचे आएगा, एक तो इस चीज का खास ख्याल रखें। और दूसरा सर जी, मैं कहता हूँ कि अपने बजट को बैलेंस रखें, कम से कम महीने में एक दफा ये देखें कि आपकी इनकम क्या है और आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। अगर उसमें डेफिसिट हो तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, नेक्स्ट मंथ में कंट्रोल कर वो चीजें न बाई करें जिनकी आपको जरूरत नहीं है, ताकि अगर आप डेफिसिट कंट्रोल करेंगे तो आप डेट में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप स्पेशली अब हमारे पास क्रेडिट कार्ड होते हैं तो हम कभी नहीं ये देखते कि हमारी इनकम क्या है, जस्ट खर्चा किए जा रहे होते हैं और वो खर्चे कहाँ से पूरे हो रहे होते हैं, क्रेडिट कार्डों से। और जब क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म होती है तो लोग उस वक्त हमारा बजट अपसेट होता है, फिर हमें लोग कॉल करते हैं। उसमें एक तो नुकसान कि हमारा पैसा काफी सारे इंटरेस्ट में जाया हो जाता है तो फिर क्रेडिट भी खराब होता है। तो इस चीज का खास ख्याल रखेंगे तो आप डेट में जाएंगे नहीं, लेकिन आप ऑलरेडी डेट में है, चाहे वो छोटा कर्जा है या बड़ा, आप मेरे ऑफिस में आके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और हमारे पास आने का फायदा ये आपको कि हम अपने क्लाइंट के लिए काम करते हैं, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जब क्लाइंट के साथ बैठता हूँ, उनका केस रिव्यू करके उनको बताता हूँ कि क्या आपको रिलीफ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा आपके लिए और उसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे। हमारी लोकेशन है स्कार्बो में मार्कम एंड अरेंजमेंट के पास, इटोबी को में हेड ऑफिस है किपलिंग और एक्सेल के पास, इसागा में है टॉमकिन डंडास के पास, और ब्रैम्पटन में है डिक्सी बुवेर के पास। जो भी लोकेशन आपको नजदीक पड़े मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मैं खुद आपके साथ बैठूंगा, आपकी सिचुएशन को रिव्यू करके बताऊंगा कि आपको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, कि रिलीफ लेना है तो कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा आपके लिए, और उसके बाद आप खुद घर जाके डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या ये ऑप्शन अवेल करना है या नहीं करना। लेकिन अगर आप मुझे आप केस देंगे, मुझ पर एतमाद करेंगे, तो किसी किस्म का सरप्राइज आपको मेरे ऑफिस से कभी नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। और मेरी फीस आपने उस वक्त देनी है जो आपसे वादा किया गया पूरा हो जाएगा, आपका अप्रूवल लेटर आपके हाथ में होगा, उसके बाद आपने हमारी फीस पे करनी है। नंबर है 416-671-0577 और वेबसाइट है www.techsolutions.ca।
alldepthsolution.ca पे सारी लोकेशंस हैं, पांच लोकेशन जैसे कि अभी आपको बताया है, 416-671-0577। तो तमाम कर्जों से निजात यानी ऑल डेप्थ सोल्यूशन के लिए सदीक साहब से कॉल कीजिएगा। नंबर एक दफा प्लीज अपना दोबारा दे दीजिए।
नंबर है 416-671-0577।
थैंक यू सो मच जी, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। जी मोस्ट वेलकम। और इसी तरह से ये मुलाकातों के सिलसिले जुड़े, आप या आपके दोस्त अहबाब में कोई भी ऐसा हो जिसको कर्जा किसके ऊपर चढ़ गया हो, तो आप जरूर ये नंबर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मैं 786 मूविंग प्लस का भी जिक्र करना चाहती हूँ, जो कि आपको जो है पूरे GTA भर में, लाइक अगर आप ब्रैम्पटन में हैं, मिसिसागा में हैं, मिल्टन में हैं, ओकविल में हैं, मिडल ऑफ द मंथ में आपको खास रियायत दी जाती है। यहाँ पर आपको मोहम्मद अमीन साहब मिलेंगे जो कि आपको बेस्ट पॉसिबल रेट देंगे। अगर आपने अपना घर, अपना अपार्टमेंट, अपना ऑफिस, स्टोरेज, कमर्शियल, रेजिडेंशियल यानी कुछ भी अगर आपने मूव करना हो, तो इनके पास एक मूविंग ट्रक है और इनके पास एक टीम है, तो आप हर तरह की पैकिंग, अनपैकिंग, लोकल लॉन्ग डिस्टेंस और कंटेनर लोडिंग वगैरह, तो ये सारा का सारा काम करते हैं। और आपका जो कीमती फर्नीचर है उसको अच्छी तरह प्लास्टिक से पैक भी करते हैं, तो आप इनसे रابطہ कर सकते हैं बहुत ही प्रोफेशनल पैकिंग और अनपैकिंग के लिए। 786 मूविंग प्लस से आप रابطہ कर लीजिएगा। अमीन साहब यहां पर होंगे जिनका नंबर है 416-786-6000। 15 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है आपका और आपको एक अच्छी सर्विस मुहैया करेंगे। 786 मूविंग प्लस 416-786-6000 इनका टेलीफोन नंबर है। तो चलिए इनके ताउन से आपको एक गीत की तरफ लेके जाना चाहती हूँ। गैस तो महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, सोने की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन ये नदीम अब्बास लूने वाला क्या कहते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं कि गड्डी तू मंगा दे, पेट्रोल मैं डलवा देता हूँ। तो सुनते हैं गड्डी तू मंगा दे।
तेनू प्यार हो गया मैनू सैया कहंदिया, तेनू प्यार हो गया मैनू सैया कहंदिया, जे मैं तेरे कोल रवा ते मैं राजी रहंदिया, जे मैं तेरे कोल रवा ते मैं राजी रहंदिया। तू मंगा दे तेल में पवन दी हां, तू मंगा दे तेल में पवन दी हां, जे मैं तेरे कोल रवा मैनू सैया कहंदियां।
Museum of Elegant Events Decor is bringing Milan South Asian Wedding Show, the biggest fashion show with entertainment, decorators, makeup and hair artists, bridal coutures and much more. Get your free tickets now. The event will be held on March 1 at Markham Convention Center. For more information, call 647-853-2504. That is 647-853-2504.
हिप से डेंटल कवरेज नहीं, मगर साहब आप परेशान मत होइएगा, डॉक्टर फियाज कुरैशी अब दो क्लिनिक से आपको सर्विस।
फाइनेंसिंग आपने करनी है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है, सारे बैंकर्स और लेंडर्स के साथ डीप ताल्लुक आता है इनके, आपको फाइनेंसिंग का बंदोबस्त भी हो जाएगा और चार्जेस भी कोई नहीं देने पड़ेंगे। हैरी सॉन्जी बड़ी कमाल की तिकड़म लड़ा सकते हैं, बस आप कॉल कर लीजिए और पैसे का अरेंज हो जाएगा। $228 से $1,000 महीना कैसे बचा सकते हैं, कॉल हैरी सॉन्ज नाउ 6472281000 हैरी सॉन्ज ऑफ मेजेस्टिक मॉर्गेजेस।
वालिया ट्रैफिक लीगल सर्विसेज से जनाब आरएस वालिया।
केयरलेस ड्राइविंग,
स्पीडिंग या फिर एक्सीडेंट,
फेल टू रिमेन स्टॉप एट द सीन,
रेड लाइट्स या फिर सीट बेल्ट्स,
परमिट ड्राइव विदाउट इंश्योरेंस,
रेसिंग, स्टूडेंट ड्राइविंग या फिर कॉट व्हाइल यूजिंग फोन,
स्पीडिंग,
आरएस वालिया आपकी टिकट से निजात दिलवाएंगे और आपके पॉइंट्स भी सेव करेंगे। 9054542112 4542112।
जी सुन रहे हैं प्रोग्राम आप साजो आवाज, इस वक्त सवा 5 हो गए हैं, हमारा आपका साथ रहेगा 6:45 तक। टाइम तेजी से गुजरता चला जा रहा है और वैसे भी आज खबरें काफी हो गई हैं, तो चलिए थोड़ी सी ब्रेक और साथ साथ स्पॉन्सर्स होंगे, क्योंकि यही स्पॉन्सर्स होते हैं जो कि हमें इस तरह का इतना लंबा आवर्स का प्रोग्राम जो है वो उसमें चलाने में हमें मावन होते हैं, मदद देते हैं, और साथ साथ फिर हम आपकी फरमाइशें भी पूरी करते चलेंगे। तो मेरे साथ इस वक्त, मैं आपकी जो अब मुलाकात कराने लगी हूँ इस वक्त, वक्कार खान हैं जिनका बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, रॉजर केबल से आप मुंसलिक हैं, क्या है इनके पास डील्स, हम इनकी जबानी सुनते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में खुश आमदेद कहती हूँ, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप?
जी बहुत शुक्रिया सरवर साहिबा, आपको और तमाम लिसनर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सरवर साहिबा, रॉजर की बहुत ही अच्छी ऑफर चल रही है, बहुत सारी प्रमोशन है, बंडल ऑफर है, पैकेज है तीनों चीजों का, टीवी है, बहुत सारे चैनल है, वॉइस कंट्रोल रिसीवर है, यूट्यूब से कनेक्टेड है, आप जो बोलेंगे यूट्यूब से निकल के आपके टीवी पे आ जाएगा। 1000 तक की स्पीड का इंटरनेट है, 1000 Mbps की सुपर फास्ट स्पीड, अनलिमिटेड डाउनलोड है, फोन में अमेरिका कनाडा सारा फ्री है, 9:30 मिनट्स आपको हर महीने इंडिया पाकिस्तान इंग्लैंड के आप डायरेक्ट बैक होम कॉल करें, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इंस्टॉलेशन भी आपकी वेव करा देंगे। इसके साथ होम सिक्योरिटी आपको बहुत ही चीप प्राइस पे मिल जाएगा, उसमें आपको बहुत ही स्पेशल रेट पे सारा पैकेज बन जाता है, बहुत ही चीप रेट पे आपको पूरा पैकेज करा के देंगे। एक बार कॉल करके जरूर इसकी इन्फॉर्मेशन लें, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। अगर आप एग्जिस्टिंग रॉजर्स कस्टमर है, टीवी इंटरनेट लगा हुआ भी है, तो भी ये पैकेज लेके अपनी प्राइस कम करा सकते हैं। सिर्फ इंटरनेट अगर लेना है तो 150 की स्पीड का इंटरनेट, अनलिमिटेड 500 और 1000 की स्पीड के इंटरनेट भी बहुत ही अच्छे रेट पे मिल जाएंगे। होम सिक्योरिटी अगर चाहिए तो रॉजर्स का लेटेस्ट होम सिक्योरिटी का सिस्टम है, आपके सेल फोन से कनेक्ट रहता है, उसी के थ्रू आर्म डिसआर्म कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन और इक्विपमेंट आपको फ्री मिलेगा। प्लीज कॉल कीजिए मुझे, फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर है मेरा 6478648000, मैं रॉजर्स एम्प्लॉई हूँ, 13 साल से रॉजर्स के साथ हूँ, मुझे उनके सिस्टम में एक्सेस है, आपके एड्रेस और अकाउंट चेक करके बेस्ट अवेलेबल प्रमोशन और एडवाइस दूंगा। नंबर अगेन 6478648000
जी बिल्कुल, इस वक्त मुलाकात चल रही है आपकी, रॉजर के एम्प्लॉय हैं वक्कार खान साहब से, बहुत सारे लोग नए आते हैं यहाँ पर, सर्विसेज देख रहे होते हैं, या फिर अगर आपने अपना प्लान भी चेंज करवाना है तो आपके पास बंडल पैकेज भी है, तो वो क्या ये सारी डील्स के लिए आप प्राप्त कीजिएगा वक्कार खान, एक दफा प्लीज अपना नंबर दोबारा से दे दीजिए।
जी 6478648000 6478648000
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।
जी बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।
अल्लाह हाफिज़। ये तो थे वक्कार खान, और ज़रूर आप रब्ता कीजिएगा अपने घर की सिक्योरिटी के लिए, आजकल काफ़ी मसाइल हैं, बहुत ब्रेकिंग्स हो रही हैं, तो आपको बहुत अच्छा पैकेज देंगे और आप साजो आवाज़ का हवाला देंगे तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं रियायत डिस्काउंट भी मिलेगा वक्कार खान से। इनका जो नंबर है 6478648000 पर आप रब्ता कर सकते हैं। विलेज टेस्ट ने भी हमें तावुन दिया है, विलेज टेस्ट जहाँ पर आपको हर तरह का मज़ेदार खाना मिल सकता है, विलेज टेस्ट जो नाम रखा है, बिल्कुल जब आप अंदर इस रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो एक गांव की ही फीलिंग होती है कि आप किसी गांव में दाखिल हो गए हैं, बहुत अपनायत का एहसास होता है और खाने भी बहुत मज़ेदार हैं, चाहे अगर आपने बारबेक्यू डिशेस खानी हो, कढ़ाई बहुत मज़ेदार है, और अगर आप डिनर बफे पे जाएंगे तो आपको 1999 में 30 आइटम्स जो वहां पर बफे लगा होगा, जो भी आपका दिल कर रहा है तो आप इंजॉय कर सकते हैं, एक बहुत अच्छी प्राइस के अंदर आप खुद आपके प्यारे या अगर आपको कोई मेहमान आ जाता है तो भी उनको लेके आप विलेज टेस्ट में खाना एंजॉय कर सकते हैं, और इसके शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक विलेज टेस्ट पर आप डिनर बफे एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्पेशल्स हैं, आप जाइए अपने मेहमानों के लेके, कोई पार्टी करनी हो, केटरिंग करवानी हो, बैठ के खाना हो, टेक आउट लेना हो, तो हर तरह की ऑप्शंस विलेज टेस्ट पर मौजूद है। फैसल शहजाद यहाँ पर होते हैं जिनका नंबर आप नोट कर लीजिए, विलेज टेस्ट का 905 इनका विलेज टेस्ट का नंबर आप नोट कर लीजिए 9052323663 9052323663 और ये 4141 डिक्सी रोड पर मिलता है आपको विलेज टेस्ट। ज़बरदस्त बफे स्टाइल में आपको नाश्ता होगा जिसमें पराठे, पूरियां, नान आप कह लें, हलवा पूरी होगा, निहारी, पाए, यू नेम इट, बहुत मज़ेदार खाना है इसका विलेज टेस्ट का, 4141 डिक्सी रोड 9052323663। घर में अगर आपने ब्लाइंड्स लगवानी है तो कैलिफोर्निया ब्लाइंड्स एंड शटर से आप रब्ता कर सकते हैं। 30 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है जॉनी का। जॉनी जी से आप रब्ता कीजिए, आपको आके आपको फ्री एस्टिमेट दे के देंगे। चाहे आपने अपने घर में हनीकॉम, स्प्लिटेड शेड्स, रोलर शेड्स, क्योंकि आजकल फैशन जो है पर्दों का भी है, लेकिन अगर आप ब्लाइंड्स लगवाना चाहते हैं तो वो हर तरह की ब्लाइंड्स, वर्टिकल्स, कैलिफोर्निया शटर सब कुछ आपको बता देंगे, प्राइस दे देंगे, फ्री एस्टिमेट है। आप रब्ता कर सकते हैं जॉनी से 416-803-1043 पर आप रब्ता कर लीजिएगा। लॉयल एक्सचेंज भी हमें ताबून दे रहे हैं। लॉयल एक्सचेंज जो कि कैश पिकअप, बैंक डिपॉजिट, किसी बैंक में वायर ट्रांसफर के लिए, लॉयल एक्सचेंज का नाम याद रखिएगा, 2003 से आपको अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और अब इनकी पिकरिंग में भी लोकेशन खुल चुकी है। इस्माइल साहब से आपने रब्ता करना है जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी भी अगर आपने मुल्क में पैसे भिजवाने हों, मंगवाने हों, तो 416-837-2675 लॉयल एक्सचेंज का नंबर है मनी ट्रांसफर के लिए, 416-837-2675 पर आप रब्ता कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं ब्राइट ऑटो सर्विस से नासिर साहब का भी नंबर देना चाहती हूँ। हफ्ते के सातों दिन आपको अपनी सर्विस देते हैं, चाहे गाड़ी की रस्ट प्रूफिंग करवानी हो, सेफ्टी सर्टिफिकेट, मफलर वेल्डिंग, ट्यूनअप्स के लिए गाड़ियों की, ट्यूइंग के लिए और कई दफ़ा सिंथेटिक ऑयल चेंज करवाना है, तो आपको लोएस्ट प्राइसेस मिलेंगी यहाँ पर ब्राइट ऑटो सर्विस पे। नासिर साहब से रब्ता कर लीजिएगा जिनका नंबर है 905-790-0019 पर आप रब्ता कर लीजिएगा। तो चलिए इन सब किताबों से आपको एक और गीत की तरफ मैं लेके जाना चाहती हूँ। और ये एक फिल्म आई थी, इंडियन फिल्म की फरमाइश है, अक्षय कुमार थे और प्रीनीति चोपड़ा थी, माही वे केसरी फिल्म का नाम था। सुनते हैं एक गीत।
सकदी नहीं मैं जी सकदा नहीं, कोई दूसरी मैं शर्ता भी रखदा नहीं, क्या तेरे बाजो मेरा सच्चियां मोहब्बत सकदी नहीं मैं रह सकदा नहीं, तेरे बिन यारा और कितने तकदा नहीं, क्या तेरे बाजो मेरा रंग तेरा चढ़या
سونا یعنی گولڈ خریدنا یا بیچنا ہے تو ایک قابل اعتماد نام روبی جولرز یاد رکھیے گا. اسلم یا اکرام بھائی سے ملاقات کیجیے گا. ہاتھ کے بنے ہوئے یا مشینی زیورات, اتنی ویرائٹی ہے چوڑیوں اور کروں میں.
کہ جو بھی ان کے پلان میں تھا کہ پاکستان کہاں کہاں جانا ہے, تو جس میں یہ لاہور, اس کے بعد پھر پنڈی, مری, اسلام آباد, اس کے علاوہ انہوں نے سالٹ مائنس بھی دیکھی ہیں پاکستان کی, اور اس کے بعد پنجا صاحب بھی گئے ہیں, کچھ گردوارہ اس کے وزٹ کیے ہیں, کرتار پور گئے ہیں, ننکانہ صاحب گئے ہیں. یہ ساری کا سارا جو اس کا جو پکچرز ہیں, اس کی جو ویڈیوز ہیں, ہم اپنے فیس بک پیج پہ بھی ساتھ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے تاکہ آپ لوگ بھی دیکھتے رہیں, کیونکہ وی آر آلسو سو ایکسائٹیڈ کہ اپنی ٹیم کو مس بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ان کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان میں ان کو کس کھلے دل سے ان کا استقبال کیا گیا. اور یہ جو چاروں پروڈیوسرز ہمارے گئے تھے, جس میں رانا جی ہیں, ہمارے کلوندر چینا ہیں, جگدیش کریوال ہیں, اور ساتھ ہیں جگراج سدھو, جو لوگ بھی ساتھ مل رہے تھے وہ رک رک کے تصویریں, سیلفیاں کھنچوا رہے تھے. اور ایسے انسیڈنٹ بھی ہوئے, دو دفعہ ایسے ہوا کہ رانا جی کا سم ہاؤ پتہ نہیں کس طرح سے کہ ان کا جو جیب سے ان کا فون سلپ کر کے گر جاتا ہے. اب نیکسٹ ٹائم اگر وہ ان کو کہیں بھیجنا ہے تو ان کی زپر لگا کے بھیجنا ہے, کیونکہ دو دفعہ ان کا فون پاکستان میں مس ہوا, اور اللہ کا شکر ہے کہ دونوں دفعہ مل گیا. پہلی دفعہ تو ایک ہوٹل میں بیٹھے کہیں تو وہاں پر سلپ کر کے صوفے میں, وہ بھی پھر کرتے کرتے شکر ہے کہ وہ فون مل گیا. اور آج بھی جب انہوں نے واگا بارڈر سے بارڈر کراس کیا تو پتا چلا کہ فون مسنگ ہے. اب سارا کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا اور آخر میں پتا چلے کہ فون مس ہو جائے تو بھی وہ بات, وہ مزہ اور وہ ایک تھوڑی سی کراہٹ سی رہ جاتی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ لوگ اتنے اچھے ہیں پاکستان کے کہ آنیسٹی جس کو کہتے ہیں کہ ان میں بھری پڑی ہے. اور کس طرح سے وہ شخص, یہ ایک رکشے والا ہے, اس کا انٹرویو بالکل آپ کے سامنے ہم بنانے پیش کرنے لگے ہیں. عارفہ جی جب فون لینے گئی ہیں ان کے پاس تو عارفہ جی نے ویڈیو بنائی ہے, وہ ویڈیو آپ کے ساتھ ہماری ٹی وی پہ بھی آپ اس کو ضرور دیکھیے گا. اگر آپ فیس بک پیج کے اوپر آ سکتے ہیں تو ای آواز پر یہ ویڈیو جو ہے یہ ساتھ کے ساتھ پروگرام میں ہم اس وقت آپ کو دکھانے لگے ہیں. اب سے کچھ ہی منٹس کے بعد آپ کو یہ ویڈیو دکھاتے ہیں. یہ جو شخص ہے رکشے والا ہے اور بہت محنت کرتا ہے, کتنا محنتی اور ایماندار ہے کہ اس نے فون کو, یہ جو آگے کہتے ہیں وہ خود ہی بتائے گا کہ سیٹ پہ کس طرح سے اس نے جب وہ سروس کے لیے لے کے گیا. اور اس کا نام ہے اس شخص کا غلام عباس. اور جب یہ صفائی کر رہا تھا تو اس کو یہ فون ملتا ہے اور پتہ نہیں کتنے دنوں کا تھا فون, لیکن سم ہاؤ اس نے پھر جا کے دیکھا تو یہ اس نے دیکھا کہ دستار پہنی ہوئی ہے. اور یہ ہمارے مہمان ہیں اور مہمانوں کی قدر تو پھر ظاہر ہے ہمارے لاہور, پاکستان, آپ کیا ہر جگہ پاکستان کے خطے خطے میں اگر آپ چلے جائیں تو جو مہمان کی مہمانداری تو مشہور ہے پاکستان میں. تو اس نے کس طرح سے کانٹیکٹ کیا اور کرتے کرتے ایک سے بندہ دوسرا سے تیسرا عارفہ جی تک کال پہنچی اور عارفہ جی اسی وقت جا کے فون لے کر آئیں. اور چلیں وہ انٹرویو آپ کے ساتھ ہم بھی سنتے ہیں.
جی سر, آپ کا نام کیا ہے؟
میرا نام غلام عباس.
غلام عباس
جی.
غلام عباس, کل آپ کے ساتھ کون آپ کی شام میں کوئی بیٹھا تھا آپ کے رکشے میں؟
میرے پاس صبح کا ٹائم تھا, آج صبح کا.
ہاں
ٹھیک ہے, میں جا رہا تھا سواری لے کے. سواری اتار کے واپس آیا ہوں, پھر ایک سواری میں نے اتاری ہے. ٹھیک ہے, جب میں آیا ہوں رکشہ سروس میں آپ خود کرتا ہوں.
اچھا,
میں نے صاف صوف کیا رکشہ, چھوٹی سیٹ ہوتی ہے بچوں والی آگے لگی ہوئی, اس کے نیچے یہ پڑا ہے. میں نے دیکھا یہ موبائل پڑا ہے, میں صبح سے پاس ہی رکھا, اس کو بند نہیں کیا.
اچھا,
اسے آن ہی پڑا ہے.
اچھا,
اس کو دیکھا ادھر لے آؤں میں, یہ بھائی جان ہمارے ادھر ہی ہم کام کرتے ہیں. میں اس کو لے آ کے پکڑایا, میں کہا یار یہ موبائل مجھے ملا ہے, ایسے ایسے ملا ہے, اس میں کارڈ وغیرہ ہیں, یہ پتہ نہیں مجھے تو ان پڑھ ہوں, اس کا چلانا نہیں آتا اس کو. اس نے کھول کر دیکھا, اس نے جہاں جہاں پر بھی کنیکٹ ہوئے ہیں وہ تو کیے ہیں, کہ ہوٹل میں کیا ہے اور ایک دو جگہ میں ہوئے ہیں ادھر کیے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا یار یہ امانت ہے, اور جو تصویریں دیکھی ہیں کہ ادھر کی سکھوں کی تھی, میں کہا یار ہمارے ملک میں آ کے وہ ادھر جا کے گالی نہ نکالیں.
نہیں نہیں, آپ بات کریں,
یہ پاکستانی ایسے ہیں کہ ایسے ہیں, یہ اس کی چیز امانت واپس کرنی.
اچھا, یہ رکشا آپ کے پاس ریپیئر کے لیے آیا تھا؟
نہیں نہیں نہیں, میرا اپنا رکشا.
تے نال اے سی کدو بیٹھے سی؟
ہاں مینوں نہیں جی اس گل دا علم ہے, کدو بیٹھے تھے کدو نہیں بیٹھے, میں نے غور نہیں کیتی, اسی سواری بٹھائی دی ہے لا دی دی ہے, کیوں یہ نہیں پتا مینوں آج کا یہ ڈگا ہوا ہے, کل کا ڈگا ہوا ہے, پرسوں کا ڈگا ہوا ہے, اس چیز کا مجھے معلوم نہیں. مجھے تو آج ہی اس کا پتا چلا, جب میں دیکھا رکشہ صاف کیا تو نیچے پڑا تھا. اور انشاءاللہ ہمارا اصول ہے کسی بھی سواری کا سامان رہ جاتا ہے ہم اس کو واپس کرتے ہیں.
پاکستان بہت پیارا ہے, اے ساڈے مہمان 12 تاریخ نو ایتھے آئے سی اور اسے بھائی دا دوجی واری فون گواچیا.
جی جی,
جدوں دا پہلی واری گواچیا سی اودوں وی تہاڈے ورگے کسے بیبے کو لبیا اونے دیتا.
جی,
ہن وی انہاں دا گواچیا تے میں تہاڈی بڑی شکر گزار ہاں کہ, اور میرا خیال ہے پاکستان چ میجورٹی ایمانداراں دی ہے.
انشاءاللہ سارے ایک جیسے ہو جائیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے نا.
سر آپ کا بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں تھوڑا سا نا سارے تالی بجا دو جی. بہت شکریہ آپ تمام کا, آپ کے لیے ایک تحفہ ہے میں آپ کو ضرور دوں گی, ایمانداری کا کوئی بدل نہیں, اس کا ریٹرن آپ کو اللہ کی ذات.
بے شک,
سب کچھ دنیا تے اتھے رہ جانا, سب کچھ دنیا تے اتھے رہ جانا, ایک ایمان جانا ہے.
باجی ساری دیہڑی محنت کری دی, دیکھو رکشہ چلائی دے, رکشہ چلا کے اتھے آ کے کام کری دے, محنت کری دی, مزدوری کری دی,
حق لال تسی دکھاؤ کی
چلا دے نا, رکشہ بھی چلا, رکشہ بھی چلانا, انہاں دا کام بھی کردا, مکینک بھی ہاں.
ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮਕੈਨਿਕ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦੀਜੀਏਗਾ ਇਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਾਂ ਔਰ ਰਾਣਾ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਰ ਇਟਸ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ 100 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦ ਬੁਰਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੇਟਾ
गाड़ी घर या कमर्शियल जैसा कि बिजनेस ट्रक्स डिलीवरी व्हीकल्स कार्गो वैन्स वर्कशॉप्स ग्रोसरी स्टोर्स रेस्टोरेंट्स की इंश्योरेंस के लिए वकार अजीम से राब्ता कीजिएगा वकार अजीम यकीनी बनाएंगे कि कार घर या कमर्शियल इंश्योरेंस कम अज कम रेट पर लेकर दे मगर कवरेज आपको बेहतरीन से बेहतरीन मिले यकीनन अपने पैसे और वक्त की बचत के लिए ईमानदार और रिलायबल सर्विस की मोस्ट कॉम्पिटेटिव रेट्स के लिए वकार अजीम 416-302-2522
क्या बात है बेटे बढ़िया बाजार नजर आ रही है
अबू जान खुदा का वास्ता इस गाड़ी से तो बेहतर एक गधा गाड़ी खरीदे हर मोड़ पे रुक जाती है
और बच्चे परेशान क्यों होती हो लाओ गाड़ी की चाबी दो अभी लेकर जाता हूँ प्रीमियम ऑटो रिपेयर गाड़ी की नब्ज देखकर खराबी की जड़ तक पहुँच जाएंगे
मेरी सहेली ने भी कहा था
वहाँ पर कूलिंग सिस्टम इंजन ट्यूनअप चार व्हील कंप्यूटर बैलेंस ब्रेक्स नए और पुराने टायर साफ ऑयल फिल्टर मुफ्त में चेंज स्टार्टर अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी फर फर भागेगी 21 मेलविक ड्राइव इटोबिको टेलीफोन 416-747-6800
सोना यानी गोल्ड खरीदना या बेचना है तो एक काबिल एतमाद नाम रूबी ज्वेलर्स याद रखिएगा असलम या इकराम भाई से मुलाकात कीजिएगा हाथ के बने हुए या मशीनी जेवरात इतनी वैरायटी है चूड़ियों और करों में चेन्स में आप सोने की खरीदारी के लिए एक बा एतमाद नाम रूबी ज्वेलर्स विजिट जरूर कीजिएगा प्रोग्राम का रेफरेंस देंगे तो डिस्काउंट भी है और सोने की रिपेयर कोई चार्ज नहीं रूबी ज्वेलर्स 7086 एयरपोर्ट रोड माल्टन में रूबी ज्वेलर्स
जी ये जो वीडियो है ये जरूर आप देखिएगा ये टीवी पे फेसबुक पे मौजूद है हमारा फेसबुक पेज है ई आवाज के नाम से आइए और इस मैसेज को इस पैगाम को और इस जो बड़ा अच्छा लगा ये जो गुलाम अब्बास है ये रिक्शा ड्राइवर है इसके मैसेज को कि किस तरह ईमानदारी से इसने वो चीज़ वापस की और शेयर ज़रूर कीजिएगा प्रोग्राम में बस आपसे इजाज़त चाहते हैं आई एम सॉरी कि मैं शाहिद साहब आपकी फरमाइश ये कल पे वादा रखते हुए कि ये जो एक तारा जिया और बनता भी है ये डेडिकेट करेंगे इस रिक्शा ड्राइवर गुलाम अब्बास को आपका ये जो गीत है एक तारा जिया मैडम नूरजहां की आवाज़ में कल पक्का वादा कि आपको लगाएंगे इजाज़त चाहते हैं मैं थी सरवत फारूक मेरी पूरी टीम जीशान आमिर भाई शाजिया जी की तरफ से आप सबको खुदा हाफिज़ कहते हैं और जाते जाते हमेशा की तरह हम तमाम लोगों को याद करते हुए जाते हैं जिन्होंने अपना सफ़र मुकम्मल करके इस दुनिया से जो लोग जा चुके हैं ख़ासकर मुजफ्फर भाई को कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे और उनके दर्जात बुलंद करे आमीन सुम्मा आमीन बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल्स का आपकी फरमाइशों का हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का जिनके तावुन से इस प्रोग्राम को पेश किया फिर इस उम्मीद से कि होगी कल मुलाकात इजाजत चाहते हैं अल्लाह हाफिज
ऐ खुदा ज़ात का अपनी मुझे इरफ़ान हो जाए ऐ खुदा ज़ात का अपनी मुझे इरफ़ान हो जाए मेरी हर सांस तेरे ताबे फरमा हो जाए मेरी हर सांस तेरे ताबे फरमा हो जाए
WTOR, Youngstown, Toronto, now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music. Thank you.
एडवर्टाइजमेंट या फीडबैक के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 647-898-6245 647-898-6245। प्रोग्राम का आगाज करते हैं हमेशा की तरह बीबीसी न्यूज से सेरवीन के साथ।
मैं हूं आलिया नाज़ की, आज सेरवीन का अहम मौजू है। इंडिया के ज़ेर-ए-इंतज़ाम कश्मीर में सोशल मीडिया का मुबैना तौर पर गैर कानूनी इस्तेमाल करने पर कलदम कानून के तहत मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हम जायजा लेंगे कि इस कार्रवाई की कानूनी हैसियत क्या है। इसके अलावा सेरबीन में आज ये भी शामिल है, बीबीसी को चीनी कैंपों में रखे गए वीगर मुसलमानों से मुतल्लिक सरकारी पॉलिसियों के बारे में नए शवाहिद हाथ आए हैं जिनसे उनकी हालत इज़हार का पता चलता है। और सेरबीन में ये भी देखिएगा कि कैसे एक तस्वीर ने हकीकत का रूप धारा और एक अनोखी गाड़ी वजूद में आई। आप हमें टीवी पर देखने और रेडियो पर सुनने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप बीबीसी उर्दू का प्रोग्राम सेरबीन देख रहे हैं। इंतजाम जम्मू कश्मीर में मरकजी हुकूमत ने एक ऐसे कानून के तहत कश्मीरियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट कलदम करार दे चुकी है। पुलिस ने सोशल मीडिया का मुबैना तौर पर गैर कानूनी इस्तेमाल करने पर मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत FIR दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि ये अफराद गैर कानूनी जराये से सोशल मीडिया तक रसाई हासिल कर रहे थे। मरकजी हुकूमत ने 5 अगस्त को कश्मीर की आईनी हैसियत के खात्मे के साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इंटरनेट मुअत्तल कर दिया था। 5 माह बाद जनवरी में वादी में 2G इंटरनेट बहाल कर दिया गया था, लेकिन इसके तहत सिर्फ हुकूमत की मंजूर शुदा चंद वेबसाइट्स तक रसाई की ही इजाजत थी। पुलिस का मौकिफ है कि VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए की गई सोशल पोस्ट का मकसद अलहदगी पसंद नजरिए और शिद्दत पसंदी को फरोग देना था। कश्मीर की पुलिस ने इंफॉर्मेशन एक्ट की शिक नंबर 66A के तहत FIR दर्ज की है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आजादी इजहार के मुनाफी और गैर आईनी करार देते हुए 5 साल कबल खत्म कर दिया था। इन FIRs के बारे में कश्मीर पुलिस का कहना था,
जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे मिसक्रेडिट लोग जो है ये सोशल मीडिया को मिसयूज कर रहे हैं VPN के थ्रू, जिसमें बहुत सारे रूमर फेक न्यूज फैला रहे हैं, लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं। इसलिए पुलिस ने आज साइबर थाना में एक FIR लगाई जिसका FIR नंबर 1 है, यह इंफॉर्मेशन एक्ट अनलॉफुल एक्टिविटी और IPC के तहत लगाया गया है। इसलिए FIR लॉन्च कर रहे हैं, हम लोग तफ्तीश शुरू कर दिए हैं और जो पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
इस बारे में सोशल मीडिया पर भी बात हो रही है। ट्विटर यूजर योगेश लोंढे ने अपनी ट्वीट में लिखा कि कश्मीर में VPN के इस्तेमाल पर पुलिस किसी के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। ऐसा लगता है कि डिजिटल हुकूक इंसानी हुकूक के जुमरे में नहीं आते। जबकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट की। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है ना, हर रोज वहां इस बात के शवाहिद मिलते हैं कि अमित शाह कश्मीर को कितना कम जानते हैं। अब वो मजालिम अदम सलाहियत और तजलील के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। कश्मीर में ताजा सूरत हाल के तनाजर में बात करने के लिए इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं साइबर कवानीन के माहिर और सुप्रीम कोर्ट के वकील पवन दुग्गल। पवन दुग्गल साहब, सेरबीन में खुश आमदीद। सबसे पहले तो हमें यही बताएं कि क्या कानूनी तौर पर यह मुमकिन है कि आप VPN एक्सेस करने के लिए इस तरह सबके खिलाफ FIR दर्ज कर दें?
देखिए, कानून के बहुत सारे प्रावधान हैं और उन प्रावधानों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जब आप VPN की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बात इंक्रिप्शन पर आ जाती है। और इंक्रिप्शन को लेकर हमारे यहाँ धारा 84A है भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, जो केंद्रीय सरकार को पावर देती है कि वो राष्ट्रीय पॉलिसी का गठन करेगी इंक्रिप्शन को लेकर। अब ये कानून पारित हुआ था 2008 में संशोधन या अमेंडमेंट्स के तौर पर, और पिछले 12 सालों में अभी तक कोई इंक्रिप्शन को लेकर पॉलिसी आई नहीं है। तो आज अगर बुनियादी जो लेवल्स मौजूद हैं वो केवल मौजूद हैं 40-bit इंक्रिप्शन के, जो हमें मिलते हैं NTP नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 1999 के तहत। तो जब तक कानून क्लियर नहीं है इंक्रिप्शन को लेकर, मुझे लगता है कि एक ग्रे एरिया है,
यानी ग्रे एरिया है, कानून वाज़े नहीं। सही है, लेकिन क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? क्या कोई प्रेसिडेंट है कि एक इंटायर आबादी पॉपुलेशन के खिलाफ आप इस तरह से FIR दर्ज कर दें?
دیکھیں یہ کوئی ایف آئی آر کسی آبادی کسی پاپولیشن کے برخلاف نہیں ہے, یہ ایف آئی آر ان نون لوگوں کے برخلاف ہے جو لوگ سوشل میڈیا کا دروپیوگ کر رہے ہیں. اب دیکھیں قانون کے پراودھان ہے, اگر آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں بھارت کی سوورینٹی سیکیورٹی یا انٹیگریٹی کے برخلاف تب قانونی کاروائی کی جا سکتی ہے. تو اس لیے ان لافل ایکٹیویٹیز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے. اب وہ تو آئیڈینٹیفائی کیے جائیں گے کہ کون کون سے یوزرز تھے جنہوں نے قانون کا الگھن کیا, کیونکہ ایک بار قانون نے کہا کہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال رومرز مانگرنگ کے لیے نہیں کریں گے یا بھارت کی سوورینٹی یا سیکیورٹی یا انٹیگریٹی کے برخلاف نہیں کریں گے, اور اس کے بعد کچھ ہوتا ہے تو وہ قانونی مسئلوں کا معاملہ ہوتا ہے, وہ آنے والا ایویڈنس ہی بتا پائے گا.
پریکٹیکلی اگر پوٹینشلی سینکڑوں میں یا ہزاروں میں ان لوگوں کی تعداد ہے جنہوں نے اس طرح کے مبینہ پوسٹ کیے ہیں, کیا پریکٹیکلی انہیں سب کو پروسیکیوٹ کرنا جیلوں میں ڈالنا مقصد یہ ہے یا پھر مقصد کچھ اور ہے؟
دیکھیے یہ کیول ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے جو پہلی ایف آئی آر ہے شری نگر میں اس طرح کے سائبر معاملے کو لے کر. اب یہ تفتیش ہوگی, انویسٹیگیشنز ہوں گی, ریلیونٹ انفارمیشن آئے گی, کون دے گا؟ سروس پرووائڈرز دیں گے. جو سروس پرووائڈرز دیں گے اس کے بنیاد پر جہاں جہاں انویسٹیگیشنز لیڈ کریں گی اور لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی ان کو بھی ایز ان نون اکیوز کے دائرے میں لا کے پھر اب پراپر پروسیکیوشن کی جا سکتی ہے. بٹ مجھے نہیں لگتا کہ اس پورے ایف آئی آر کا ادیش یا آبجیکٹیو ہے کہ پوری پاپولیشن کو یا پورے سویلینس کو آپ ٹارگیٹ کریں. مجھے لگتا ہے کیول کلیئرٹی بھی آ گئی ہے کہ کیول وہیں پر ہی ان لوگوں کو آپ پوٹینشلی فوکس کریں گے جنہوں نے اس نوٹیفیکیشن کا وائلیشن کیا ہے, اور جہاں پر سوشل میڈیا کا مس یوز کہیں نہ کہیں بھارت کی سوورینٹی سیکیورٹی انٹیگریٹی یا پبلک آرڈر کے برخلاف کیا گیا ہو.
دلی سے پون دگل, ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. انڈیا میں سابق اسٹوڈنٹ لیڈر اور کمیونسٹ رہنما کنہیا کمار نے پچھلے کئی ہفتے سے شہریت قانون اور این آر سی کے خلاف پورے بہار میں مہم چلا رکھی ہے. ہمارے نامہ نگار شکیل اختر نے ان سے بکسر میں ملاقات کی اور ان سے پہلے یہی پوچھا کہ ملک کی سیاست میں اچانک اتنی مذہبی نفرت کیوں داخل ہو گئی.
اکانومک کرائسس پیدا ہوتا ہے تو پالیٹکس میں ہیٹریڈ بیسڈ پالیٹکس نفرت آدھارت راجنیتی جو ہے وہ ابھار اس کا ہوتا ہے, وہ بڑھتا ہے. اور بھارت میں بھی یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لگاتار یہاں کی جو اکانومی ہے وہ نیچے جا رہی ہے. اس اکانومک کنڈیشن سے ڈائیورژن کے لیے یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے جو لوگ پاور میں بیٹھے ہیں وہ لوگوں کو غیر ضروری مدوں میں الجھائیں.
پاکستان غدار مسلمان, خاص طور سے مسلمان, اس طرح کے جو پورا بنیاد جو ہے نفرت کی سیاست کی یہی ہے, انہیں ویلن یا دشمن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے, اس کا سیاسی فائدہ بھی ہو رہا ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا سماج میں جو ان لوگوں کے گرد جو نیریٹو ہے, جو بیانیہ ہے, کیا اسے اب عوام بھی قبول کرنے لگے ہیں؟
کسی بھی دھرم کو ماننے والے لوگ ہیں, چاہے وہ مندر جاتے ہوں یا مسجد جاتے ہوں, گردوارے جاتے ہوں یا گرجا گھر جاتے ہوں, وہ کہیں نہ کہیں یہ بات ریئلائز کرتے ہیں کہ سب ایک ہیں. ہمارا پریکٹیسز الگ ہو سکتا ہے لیکن ہم سب ایک ہیں, اور یہ سینس جو ہے وہ کافی ڈیپ روٹیڈ ہے. اس وجہ سے جو کمیونل پالیٹکس ہے وہ اسٹرانگ تو ہوئی ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس نیریٹو کا ایک کاؤنٹر نیریٹو بھی سائملٹینیسلی سوسائٹی میں گرو کر رہا ہے. یہ دیش دھارمک ضرور ہے لیکن دھرم کے آدھار پر راجنیتی کو پوری طریقے سے سویکار نہیں کیا ہے. یہ بات سچ ہے کہ دھرم کے آدھار پہ جو راجنیتی کرنے والے لوگ ہیں وہ لگاتار بڑھ رہے ہیں.
مودی حکومت ایک طاقتور حکومت ہے اور اپوزیشن ایک طرح کے شونیہ سیاسی شونیہ سے گزر رہا ہے, ایک سیاسی خلا سے گزر رہا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسی خلا سے کوئی نیتروتو یا کوئی نئی قیادت ابھر کے آئے گی؟
دیکھیے آپ جب بھی ہندوستان میں کسی بھی موومنٹ کو انالائز کریں گے تو سب سے بڑا چیلنج یہی ہوتا ہے کہ جو موومنٹ الگ الگ پاکٹس میں ہو رہے ہیں ان کو ایک کامن منیمم پروگرام کے ساتھ کیسے جوڑا جائے. یہ ہم تمام لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ اس دیش کا جو پالیسی فریم ورک ہے اس پالیسی فریم ورک میں ایک دقت ہے. اس پالیسی فریم ورک کے چلتے یہ ہو رہا ہے کہ اس دیش میں ماتر 67 ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 70% سمپتی ہے دیش کا, اور ایک ایک کارپوریٹ گھرانے کا جو بجٹ ہے وہ دیش کے بجٹ سے زیادہ ہے. تو یہ جو ویلتھ کا ایکومولیشن ہوا ہے ایک طرف سے, اور دوسری طرف اسٹیٹ تو ہے, ہر سال جو ہے وہ گورنمنٹ بھی چنی جاتی ہے, لیکن جو گورنمنٹ رن कंपनियां हैं वो रोज बिक रही हैं। तो देश जहां एनआरसी में उलझा हुआ है ठीक उसी वक्त जो है एलआईसी को बेचा जा रहा है। तो ये दोनों सवाल को कहीं ना कहीं जब तक आपस में जोड़ा नहीं जाएगा तो ये अपोजिशन का वैक्यूम रहेगा।
कन्हैया ये बताइए कि नागरिकता का कानून, शरीयत का जो कानून आया, उसके आने के बाद आपने बिहार में हर ज़िले में एक यात्रा निकाली हुई है, आप कह रहे हैं कि ये आईन और संविधान को बचाने की यात्रा है, सेकुलर आईन को बचाने की यात्रा है, इसमें कौन लोग आ रहे हैं और कितने लोग आ रहे हैं?
ये जो एनआरसी और एनपीआर का मामला है वो एक आबादी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। तो अगर पूरे देश में एनआरसी होता है और आसाम का उदाहरण हम देखते हैं तो सिर्फ मुसलमान आबादी इसमें परेशान नहीं होगी बल्कि इस देश की तमाम गरीब आबादी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो आदिवासी हैं, जो नोमेडिक ट्राइब्स के लोग हैं, जो दलित हैं, जो महादलित हैं, जो महिलाएं हैं और जो माइग्रेशन के चलते एक जगह का लेबर दूसरी जगह जाकर के जो काम करता है, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी और तकलीफ उठाना पड़ेगा। क्योंकि कागज़ की छोटी छोटी गलतियों को आधार बना करके जब लोगों के नाम काटे जाएंगे एनआरसी से तो कागज़ की स्थिति ये है कि देश की 40-50% आबादी ऐसी है जिसके पास सारे कागज़ ठीक नहीं है। उसी आबादी को मुसलमान आबादी का नाम लेकर के, मुसलमानों को सामने रख करके यही जो हिंदू आबादी है उसको कंफ्यूज करने के लिए ये सीएए का प्रोसेस शुरू किया।
सर्बिन में आगे चलकर देखिएगा कि चीन के मगरबी सूबे शिनजियांग में आबाद बीगर मुसलमानों को किस तरह से बजाहिर सरकारी इम्तियाज का सामना है। बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम सर्बिन में एक बार फिर खुश आमदीद, मैं हूँ आलिया नाज़ की। बीबीसी को बाज़ दस्तावेजात मिली हैं जिनसे चीनी कैंपों में नजरबंद मुसलमानों के बारे में तफसीली और अहम मालूमात सामने आई हैं। नाकदीन का कहना है कि ये चीन के दूर उफ्तादा मगरबी इलाके शिनजियांग में आबाद वीगर मुसलमानों के खिलाफ चीनी हुक्काम की मजहबी इम्तियाज की पॉलिसी का सबूत है। बीबीसी के नामनगार जेम्स लैंडेल की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं उमर आफरीदी।
बीबीसी ने पिछले दो बरस से मगरबी चीन में कायम इन कैंपों की रिपोर्टिंग की है जहां बगैर मुकदमा